ओम शांति। हम सभी ने अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया सभी ने, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता क्या है वो बाबा ने हम सब आत्माओं को आके बताया। संसार में तो बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार उसको मनाने में भी थोड़ी अलग से उसकी रौनक देखी। तो हर व्यक्ति जीवन में स्वतंत्रता चाहता है, कोई भी आत्मा में अधीनता के संस्कार नहीं है। वास्तव में हर आत्मा अपने विचारों के आधार से स्वतंत्र रहकर जीना चाहती है, क्योंकि आत्मा के मूल संस्कार ही हैं स्वतंत्रता के। वैसे भी अगर यदि हम किसी कमरे में लंबे समय तक बंद रहें तो क्या होता है, आदमी तड़फ जाता है, घुटन होती महसूस, सफोकेशन होती, उसको बाहर निकलना चाहता है। इसलिए कोई प्रकृति के गोद में जाता है, भले कोई अपने घर में अच्छे अच्छे मकान बंगले में भी रह रहा है, लेकिन फिर भी उस माहौल से निकलकर, भले वहां सारे संसार के संसाधन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उस माहौल से निकलकर कुछ समय के लिए उससे जुदा होना चाहता है। स्वतंत्र घूमने फिरने जाएंगे, पिकनिक पार्टी मनाएंगे। तो आत्मा में वास्तव में मूल संस्कार स्वतंत्रता के हैं। तो गीत जैसे सुना अभी हमने, माया का साया पड़ गया है, क्योंकि माया में भी, मायावी विकारों में भी क्या है, जादुई शक्ति है, कम नहीं है। नाम रूप की बीमारी है, नाम रूप का जादू है, देह विमान का जादू है। अनेक जन्मों से हम आत्मों के अंदर बहुत सारे विकारों की लेयर्स जमी हुई है, लेकिन हमें जो दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, वो वर्तमान दिखाई देता है। ये भी एक कुदरत का बहुत ही अच्छा नियम है, जो कम से कम हमको केवल अभी इसी जन्म का थोड़ा बहुत मालूम है। अगर पिछले अनेक जन्मों का मालूम होता तो फिर क्या हो जाता, मनुष्य जी नहीं पाता। वो एक दूसरी प्रक्रिया है, हिप्नोटिज्म के माध्यम से अनेक जन्म पीछे जाया जा सकता है, लेकिन जैसे आत्मा यात्रा है, हम यहां बैठे हैं और हमको यहां पहुंचना है, तो बीच में बहुत सारे स्टेप हैं, साइड सीन है। तो जो हमने यहां से यात्रा चालू की और यहां पहुंचे, जो जो हमने बीच में देखा, वो सारा आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग हुआ है। उसी तरह से बाबा कहते हैं, सत्ययुग त्रेता में तुम आत्मा सतो प्रधान थी। उतरती कला वास्तव में तो सत्ययुग से चालू हो जाती है, लेकिन जल्दी जल्दी फास्ट गति से द्वापर युग से चालू होती है। तो जो भी हमने वहां से लेकर और यहां तक जो यात्रा की है, जितने भी दृश्य देखे इन आंखों से, जितने भी संकल्प किए हैं, जितने भी हमारे मुख से बोल निकले हुए हैं, वो सब आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है। समय आने पर जैसे उसको माहौल मिलता है, उसी अनुसार वो जो बीज है अंदर में वो अंकुरित हो जाते हैं, और वही माया का रूप, चाहे वो कमजोर संकल्पों के रूप में, चाहे हमारी वो क्रिमिनल आई के रूप में है, चाहे हमारे जो व्यंग्य बड़े बोल के रूप में है, वो सामने प्रत्यक्ष रूप में आते हैं, और उन्हीं संस्कारों के कारण हम फिर तंग होते हैं। वर्तमान जीवन को हम अपने जानते हैं तो कंट्रोल रखने के लिए हम प्रयास करते हैं, जोर लगाते हैं और उस पर विजय भी पा लेते हैं। फिर भी कभी कभी क्या होता है, लंबे समय से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, हमारे दिन प्रतिदिन चढ़ती कला जाती जा रही है, लेकिन अचानक से खुशी गायब हो जाती है। तो क्या कारण है उसका, हमारा संग भी ठीक है, हम कहीं ऐसा भी गए नहीं, खाना पीना भी ठीक है समझ लीजिए, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक खुशी गायब हो जाती है। क्यों? पास्ट का प्रेशर ऊपर बहुत है आत्मा के ऊपर। तो 63 जन्मों की एक मैल चढ़ी आत्मा के ऊपर, माया का जो साया है वो बहुत भारी है। इसलिए बाबा कहते, विकर्मों को विनाश करना है, विकर्मों से बचना है। आज की मुरली में भी है ना, माया से अपनी सेफ्टी करनी है, विकारों से बचना है। और सेफ्टी का साधन क्या है? माया के जो हम विकारों के चंबे में फंस गए हैं, उसके सेफ्टी का साधन यही है, बाबा की याद। बाबा ने कहा आज की बाबा ने कहा बाप को फुरना रहता है, कौन सा? आज की साकार वाणी में है, बाप को फुरना रहता है मेरे बच्चे माया के नाले में कहीं बह ना जाएं, गटर में चले ना जाएं। फिर बाबा ने कहा माया किस तरह से आती है? तूफान बनकर आती है, वो काम महाशत्रु के रूप में आती है। तुम्हें काम महाशत्रु पर जीत पानी है। कल के मूल्य में था माया जीते जगत जीत। तो ये पथ कोई साधारण नहीं है, इसमें कोटों में कोई, कोई में कोई और कोई में भी कोई निकलते हैं आगे। अगर सभी राजा तो बनेंगे नहीं, बाबा ने कहा, नहीं तो तख्त कितने बनाने पड़ेंगे। संडे के मुरली में था 1.5 लाख उस दिन, उस समय की संख्या के अनुसार। तो उसी तरह से ये भी एक यूनिवर्सिटी है, इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। और इस मार्ग पर चलने के लिए बाबा ने हम सबको बहुत तौर तरीके सिखाए हैं कैसे इस मार्ग से निकलना है। हमको रहम दिल तो बनना है, लेकिन रहम दिल के साथ साथ कहीं बहुत सारी अवस्थाओं को भी प्राप्त करना है, कहीं साक्षी होकर भी रहना पड़ेगा। अगर हम कुछ अधिक ही रहम दिल हो गए तो खुद का पुरुषार्थ छूट जाएगा पीछे। इसलिए बाबा कहते चैरिटी बिगेन्स एट होम, पहले स्वयं की सुरक्षा इतनी मजबूत कर देनी है ताकि उस सुरक्षा के हिसाब से हमारी यात्रा सुगम हो सके। तो आज का जो टॉपिक है माया से मुक्ति के मंत्र। जैसे बताया हर कोई मुक्ति चाहता है, अर्थात स्वतंत्रता चाहता है। तो हम सब आत्मा इसमें विकारों के चंबे में हैं, उसके चंगुल में फंसे हुए हैं। तो उससे छूटेंगे कैसे? जैसे संसार में भी अगर किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया होता है, ये घर में बहुत कला क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में किसी की बनती नहीं है, कोई काम बार बार बिगड़ जाता है, या बच्चे सुनते नहीं हैं, घर का माहौल सारा अशांति वाला है, टेंशन वाला है, भय वाला है, तो क्या करते हैं फिर? सारा काम काज भी सारे अपना वो युक्तियां रच लेते हैं, फिर भी फिर कोई कोई मंत्र जाप करते हैं, साधु संतों की शरण में जाएंगे, ज्योतिषियों की शरण में जाएंगे। किस लिए? मंत्र प्राप्ति के लिए, कोई कोई ऐसा मंत्र मिल जाए। इसलिए भक्ति में भी गुरु लोग जो होते हैं वो मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं घर की शांति के लिए, कला क्लेश खत्म हो जाए उसके लिए। तो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए संसार में भी बहुत सारी युक्तियों की रचना है, रची जाती हैं, और उसका भी फल मिलता है, ऐसा नहीं है। और उन रिद्धि सिद्धियों का भी प्रभाव पड़ता है, तो वो तो है एक जन्म का। लेकिन बाबा हमको ऐसे मंत्र देते हैं जिससे हमारा पूरा कल्प ही क्या हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है, पूरा कल्प ही हमारा उद्धार हो जाता है। क्योंकि अनेक जन्मों से आत्मा प्रतंत्रता की जंजीरों के अंदर जगड़ी पड़ी है, मन 63 कमरों के अंदर में बैठे हुए हम जाके। जैसे कोई सब्जी होती है, गोभी होता है, तो ऊपर में कितने छिलके लगे हुए, उसके अंदर तक पहुंचने के लिए सारे छिलके उतारने पड़ते हैं। उसी तरह से हम सब आत्माओं के अंदर भी अनेक जन्मों के अनेक विकारों की लेयरें हैं। वो लेयर्स हम ऊपर ऊपर से हमको दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर में नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह पुरुषार्थ के मार्ग में भी, मान लीजिए कोई पुरुषार्थ अभी जो हमको दिखाई दे रहा है ये तो ठीक नहीं है, ये तो ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन उसका हमने प्रारंभिक काल नहीं देखा हुआ है। उस समय जो प्रारंभिक काल में उसने जो भगवान को मदद की है उसमें हम नहीं पहुंचे थे। उस समय के जो मार्ग उसके जमा है आज तक उनका ब्याज सहित बहुत सारा उसके पास जमा हो गया हुआ है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण एक काल रहता है, एक काल को सामने देखकर हम चलते हैं। लेकिन त्रिकालदर्शी बाबा जानता है हर आत्मा का कैसा पार्ट है, इसलिए बाबा ने कुछ साल पहले मुरली में शांतिवन में भी मुरली चली थी डायमंड हॉल में, तो वहां भी कहा था विशेषकर नयों को सामने रखते हुए बाबा ने कहा था कि नए बच्चे ऐसे नहीं सोचने कि पुराने ऐसे कर रहे हैं। बाबा ने कहा वो तो एक सेकंड में हाई जंप दे देंगे और तुम रह जाएंगे वहीं, क्योंकि बाबा ने कहा उन आत्माओं का पुण्य बहुत जमा है, उस समय का एक रुपया और आज के कितने होंगे, तो उसमें जो उन्होंने मदद की है तिनके माफिक भी उनका बहुत सारा जमा है। इसलिए बाबा की नजरों में हर बच्चा ब्राह्मण बच्चा विशेष है, चाहे वो लास्ट में है चाहे वो पहले से है। इसलिए हर एक को चांस है लास्ट को फास्ट जाने का। हम जब नए नए ज्ञान में आए थे तो हमारे में भी थोड़ा अवगुणों को देखने की आदत थी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम वर्णन नहीं करते थे, उनको बताते नहीं थे। हाँ, हम उनसे ये सीखते थे कि अभी आगे जाने का मार्जिन है, ये सामने वाला नहीं बदला है, इसको बदलने का भी हमको एक मौका मिला है। लेकिन आज मनुष्य जो है या अपने ब्राह्मण जगत में देखेंगे तो बोलने से कोई नहीं बदलने वाला भी। अभी आत्माओं में बाबा का भावने का अंत में वो ताकत नहीं रहेगी, तुम आत्माओं को अपनी शक्ति से चलाना पड़ेगा, और वो शक्ति वाचा से प्रत्यक्ष करने की बजाय मन सा शक्ति हमारी प्रभावशाली होगी तो सामने वाली आत्माओं पर प्रभाव पड़ेगा, तो उनके अंदर परिवर्तन के बीज प्रस्फुटित होंगे। क्योंकि मेरे में सहन शक्ति नहीं है तो फिर कैसे कहेंगे, तो माया ने हम सबको इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया है, अब बाबा हमको क्या देता है, फिर मंत्र देता है। मंत्र कौन कौन से हैं, अनेक प्रकार के बाबा के मंत्र हैं। बाबा का वास्तव में हर महावाक्य हर वर्षन मंत्र है, महामंत्र का काम करता है। बाबा कहते हर वर्षन लाखों रुपए का है, एक एक वर्षन कीमती है, अनमोल है, हमारे जीवन को परिवर्तन कर देता है। कई दफा होता हम मुरली तो सुनते हैं लेकिन कोई एक ही ऐसा महावाक्य लगता है जो हमारे दिल को शेर कर देता है, घायल कर देता है। तो बाबा के बाकी महामंत्र हैं, और वास्तव में आत्मा के अंदर तो शक्तियों का अथाह भंडार है, लेकिन वास्तव में क्या है, हम विस्मृति और स्मृति के चक्कर में पड़े रहते हैं। जैसे हम विस्मृत होते हैं माया विस्मृत करा देती है, तो क्या होता है सारी हलचल। तो हमको कहाँ रह के साधना करनी है, कैसे करनी है, कैसे माया से छूटना है, इसकी युक्तियां हम अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने कर्म क्षेत्र के अनुसार ही निर्माण कर सकते हैं, वो फिर हमारा एक नेचुरल संस्कार बन जाएगा। तो माया किस किस रूप में आती है, क्योंकि माया दिन प्रतिदिन रूप बदल रही है, उससे फिर हमको मुक्त भी होना है। कैसे आती है, काली मुरली में था सबसे बड़ा कौन सा अवगुण है, देह अभिमान। उत्पत्ति माया की किससे है, देह अभिमान। सबसे पहले माया को जानना पड़ेगा, तो माया देह अभिमान है। अगर पूरा दिन हमको देह की स्मृति है, देह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, दैहिक दृष्टिकोण ही है, देह की भाषा हम बोल रहे हैं, देह का ही चाल चलन चल रहे हैं, तो माया अटैक कर रही है, हम पूरा देह अभिमान में हम डूबे हुए हैं। तो देह अभिमान से मुक्त होना है। अब लंबे समय से हमको आदत पड़ी है देह अभिमान में रहने की, और बाबा इतने थोड़े से टाइम में हमको उससे मुक्त कर रहा है, इसकी कितनी बड़ी उसके हमारे ऊपर कृपा है। तो बाबा ने क्या मंत्र दिया, देह अभिमानी बनो। हमको पहले स्वयं की पहचान दे दी, देह अभिमान की मैल तो जन्म जन्म से चढ़ी है, उसका साया है अंदर में। हमने देह अभिमान के अनेक प्रकार के विचारों को पकड़ के रखा हुआ है, छूटते भी नहीं है वो। जैसे बताया ना, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, बहन या भाई है, अगर बहन भाई को देखता है, एक बार देखना कहा जाता है स्वाभाविक है, अगर दूसरी बार देखते हैं उसको तो वो कामना है अंदर में, चाहे वो काम विकार की है, इच्छा है, कामना है, और बार बार देखते हैं वो वासना है, विकार है। तो ये सारे विकार, ये विकृतियां, विसंगतियां आत्मा इससे भरपूर है। तो पहले तो हमको रियलाइज करना पड़ेगा ये मेरे अंदर है, रियलाइज करेंगे तो ही हम रियल रूप में अपनी अवस्था को, जो हमारी रियल अवस्था है, उसका अनुभव, उसकी अनुभूति कर सकेंगे। तो देह अभिमान की चादर तो हमने पकड़ के रखी है, छोड़ते थोड़े नहीं। और देह मन किस रूप में आता है? कोई जातीय संस्कारों के रूप में आएगा, किसी को अपने कुल का नशा होता है, किसी को पद का होता है, प्रतिष्ठा का, किसी को धन का होता है, किसी को अपनी सुंदरता का होता है, चेहरे का होता है, किसी को कपड़ों का, पहनावे का होता है, अनेक प्रकार का फैशन करते हैं। तो देह अभिमान तो कूट कूट के भरा पड़ा है। कोई जैकेट पहनेगा उसका भी होता है, क्योंकि अपने को कुछ अलग से दिखना है। तो सूक्ष्म रूप से बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा अच्छा बैज लगाएंगे तो हमारा फोटो अच्छा है, तो सचमुच ये क्या हमारा बड़ा बैज लगाने से मेरा परिवर्तन हो जाएगा? कोई कोई कहते हैं हम सोने का बैज बना के देते हैं, तो हम कहते हैं भाई उससे हमारी अंदर की तकदीर थोड़ी बदलेगी यार, उससे हमारी स्थिति थोड़ी श्रेष्ठ होगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के थोड़ी होगी। ये तो सारा आंतरिक पुरुषार्थ है, बाहर से कुछ नहीं है ये। इसलिए बाबा की नजरों में, बाबा कहते हैं जो बच्चे मेरी नजरों में वो तुम्हारी नजरों में नहीं है। वो तो सारे अंत में जो साक्षात्कार होगा, टीवी चलेगा तो उधर कोई और ही दिखेंगे, बोलेंगे रोल तो हमने प्ले किया था, इधर तो कोई और ही दिख रहा है, सामने सब कुछ आएगा। वो तो जब टीवी खुलेगा तो हमको पता चल जाएगा। वो तो बाबा कहते एक एक संकल्प का भी रिकॉर्ड है। तो हमको देखना है कि देह अभिमान से हम कहां तक मुक्त हुए। फिर दूसरा है, दूसरा माया कैसे अटैक करती है, जो आजकल मुरली में पीछे बहुत बार आया, क्रिमिनल सॉर्ट। ये आंखें सबसे ज्यादा बाबा कहते धोखेबाज है। वास्तव में आंखें धोखेबाज नहीं है, धोखेबाज तो हमारी अंदर की स्थिति है। वो जो अंदर में बैठा है आत्मा, उसी भावना के अनुसार, उन्हीं विचारों के साथ वो देखती है। अब सामने जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा ही, लेकिन हमारी अंदर की भावना कैसी है, हमारी वृत्ति कैसी है, उस वृत्ति के अनुसार ही हम उसको देखते हैं। हाँ जी, आंखों को बदनाम कर दिया हमने। ये आंखें तो कितनी अनमोल है, आईना है हम देखने के लिए भी और दूसरों को दिखाने के लिए भी। हाँ, इन आंखों से तो भगवान को कितनी बारी हमने देखा, इन आंखों से हम प्रकृति को निहारते हैं। और वास्तव में इन आंखों से हमारे से जो निरंतर वाइब्रेशन निकलते रहते हैं वो वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए इस कमरे में एंटर हुए हैं तो सबसे पहले तो हमारी आंखें इधर देखा, उन आंखों ने जो वाइब्रेशन छोड़ दिए, मन में जो थे उसके बारे में हमने सोचा नहीं है, लेकिन वो स्वतः ही वाइब्रेशन हमारी आंखों के माध्यम से इस वातावरण में फैल गए हैं। तो हमने क्रिमिनल आई का काजल पहन के रखा हुआ, जैसे उसको छोड़ते थोड़ा नहीं, क्रिमिनलाइज चश्मा पहन के रखा हुआ है। तो उन आंखों का ऑपरेशन एक बार आशीष भाई ने करा, क्लास भी कराई थी कि क्रिमिनलाइज से कैसे छूटना है। तो ये आंखें तो बाबा कहते सिविलाइज बनाना है, इनको शीतल हो जाए कर्मेंद्रिय एकदम। और ये लंबे समय की साधना है जिंदगी भर की, लेकिन इस साधना में सुख बहुत है। आज की मुरली में वरदान था ना, क्या वरदान था? अव्यभिचारी और निर्विघ्न, ये दो चीजें। जो अव्यभिचारी बच्चे रहेंगे वो ही फर्स्ट नंबर के साथ आ सकेंगे याद में, समान और समीप, बाप के संस्कारों के समान और समीप। और दूसरा निर्विघ्न अर्थात बाप समान, अर्थात ऐसा नहीं कि विघ्न आए नहीं, विघ्न तो आएंगे लेकिन हमको वहां ठहरना नहीं है। जैसे बताए रास्ते में जा रहे हैं साइड सीन तो आएंगे, ऐसा थोड़े नहीं कि साइड सीन नहीं आएंगे, रुकना थोड़ा नहीं है वहां। ऐसा नहीं कि सारे साइड सीन अच्छे आएंगे, कहीं बदबू भी आएगी, कूड़े का ढेर भी हुआ, लेकिन वहां हम खड़े थोड़े हो जाएंगे, ये कूड़ा किसने फेंका, इसकी दुर्गंध कितनी खराब आ रही है, कब इसको कौन उठाएगा, तो हम अपने साइड सीन का आनंद थोड़ा ले पाएंगे। तो जिंदगी में अनेक प्रकार की ऐसी बातें आएंगी, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे विघ्न आएंगे, लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना, जिंदगी का मजा लेना है। और परिस्थितियां आए उसी में मजा है, तभी तो पक्के बनेंगे हम, नहीं तो हमको ठोकर कौन मारेगा। जो भी परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं वो हमें पक्का करने के लिए हो रही हैं। अगर ईंट को आग में डाल दो तुरंत निकाल दो तो क्या होगा, जो लंबे समय से आग में ईंट पड़ी रहेगी वो ही पक्की होगी। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे हमेशा भट्ठी में रहो, भट्ठी से बाहर निकले तो ही हम फिर खुराफात करते हैं, खुराफाती लोग हो जाते हैं। तो क्रिमिनल आइज का इस पर भी अटेंशन रखना है, कैसे इसे छुटकारा पाए। तो बाबा कहते सिविलाइज ना, तो इससे क्या करना है, आत्मिक दृष्टि का काजल डाल के रखना है। इसे के लिए हमको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और सच में उसमें धीरे धीरे हमको, हमने देखा है धीरे धीरे उसका रस अनुभव होता है, लेकिन मेंटेलिटी ये होती है कि हम जल्दी उसका अनुभव कर लें। हाँ कर भी सकते हैं, उतनी हमारी अंदर से तड़फ हो, आग लगी हो अंदर में, धधकड़ी हो आग, तो अनुभव भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, गर्म गर्म खाएंगे तो जीभ जलेगी जलेगी। हाँ लेकिन ज्यादा ठंडा है तो भी खराब नहीं लगता है। तो देखना है हमको, हमको अभ्यास करना है अंदर ही अंदर, आत्मिक दृष्टि का काजल हमको इन आंखों में पहन के रखना है। जैसे बताया ना, अगर भाई बहन को देख रहा है तो किस तरीके से देखना है, उसको शक्ति के रूप में देखना, देवी के रूप में देखना, उसको ब्रह्मा कुमारी के रूप में देखना, उसको बहन के रूप में देखना, उसको माँ के रूप में देखना है, इष्ट देवी के रूप में देखना है, फरिश्ता रूप में देखना है, परमधाम में वो आत्मा बाबा के साथ बैठी उस रूप में, भाई भाई के रूप में देखना है। भाई अगर बहन भाई को देखे तो एक तो भाई भाई के रूप में देखना है, फिर दूसरा फरिश्ता रूप में देखना है, शक्ति के रूप में देखना है। हाँ वो भी अपने को बहन भी समझ सकते हैं भाई, बड़ी बात नहीं है। और हनुमान के रूप में देखना है, फिर गदा लिए खड़ा है, अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो एक एक गदा पड़ेगी और उससे पाप विनाश हो जाएंगे। तो हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन करने के लिए हमको खुद ही उसका अटेंशन रखना है। और फिर उसके बाद, क्योंकि सारा हमको इन कर्मेंद्रिय जो हमको हाउस मिला है, जैसे बाबा कहते विकर्मों से बचने के लिए सदा स्मृति रहे कि मैं लाइट हाउस हूं। तो लाइट हाउस अर्थात क्या, ये हमको हाउस मिला हुआ है, इसमें मैं आत्मा लाइट बैठी हूं, ये हमको अगर स्मृति रहेगी कि अकाल तख्त पर विराजमान मैं लाइट इस हाउस के अंदर बैठी हूं, अगर हमको ये भी स्मृति है तो इस हाउस से भी डिटैच होना आसान हो जाएगा। कल रात को मुरली पढ़ रहे थे, उसमें था बाबा ने कहा विकर्मों से पाप कर्मों से बचने के लिए अपने को हमेशा लाइट हाउस समझो, ज्ञान का प्रकाश हमेशा प्रज्वलित रहे। तो आत्मिक दृष्टि। फिर नेक्स्ट है अपने कानों को कैसे रखना है, कान कान कर्मेंद्रियां, क्योंकि हम माया ने तो आक्रमण हमारी कर्मेंद्रियों पर तो किया ना, तो कानों को कैसे रखना है। बाबा ने कई दफा कहा है एक बाप से ही सुना हुआ, बाप से ही सुना हुआ सुनाओ, और वो ही बाप से ही सुनो। ऐसा नहीं कि दूसरी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, मिलेंगे, लेकिन उनको सुनने की विधि भी बताई है। और उसके लिए प्रकृति ने हमको सबको बहुत अच्छा एक ये शरीर भी दिया है कि सुनेंगे उनको निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं पता कि सुनाई नहीं पड़ेंगी। जैसे काली कोई कुछ कह रहे थे, इतने लंबे समय से यज्ञ चल रहा है, पुराने भी सब चल गए, कुछ हो तो पाया नहीं, ये नए नए क्या करेंगे। तो उसमें एक भाई एग्जाम्पल दे रहा था बहुत अच्छी, बोला भाई क्लास करा रहे थे एक भाई, तो बोला बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत सारे लोग उसको तोड़ने में लगे हुए, नहीं टूटा वो, लेकिन उन्होंने अपनी खूब मेहनत की, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की, खूब सीना बहाया उन्होंने, अपना पूरा टाइम लगाया, पूरा दिल से उन पुरुषार्थ किया, फिर अंत में पहाड़ नहीं टूटा उनसे। फिर अंत में एक दुबला पतला व्यक्ति आया, बिल्कुल दुबला पतला, उसने किया थोड़ा, उसे उठाया भी नहीं जा रहा था, थोड़ा उसने खाली ऐसे उठा के पटक दिया, वो पहाड़ टूट गया। आगे वालों ने मेहनत करके रास्ता निर्माण कर दिया था, लेकिन हिम्मत हारी नहीं है उन्होंने।
जोर से कमजोर हो गए,
हाँ, पहाड़ को कमजोर कर दिया, लेकिन दूसरों की प्रलब्ध बनाने के लिए वो रखा था, वो ढामा में नून था, उनका तो पूरा जमा है। ऐसा नहीं जमा है कि लंबे समय से जो पुरुषार्थ करके चले गए हैं, ऐसा नहीं कि उनका जमा नहीं है। बाबा ने कहा एक बार भी किसी ने अगर दिल से बाबा कहा तो उसका भी पुण्य हजार गुना जमा हो जाता है, उसको ईश्वर का वर्षा ना मिले हो ही नहीं सकता है। तो जो भी हम सुन रहे हैं, हर एक से हमको गुण उठाने हैं। यहां भी या किसी की भी हम क्लास सुनते हैं, कई दफा देखा गया है कि कई बार हम विशेष वक्ता के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं, और कईयों के ऊपर में देखेंगे कौन सुना रहा है आज नहीं जाएंगे। लेकिन हमको वही ढूंढना है जिसको देखते हैं कि इसको ये जो सुना रहा है इसके अंदर हम कैसे हम अपने कल्याण के प्रति कौन से मां वाक्य उठाएं। अगर हमने अभी भी वो विधि नहीं सीखी है तो हमारे अंदर उस वक्ता के प्रति नेगेटिव भावनाएं या कम संकल्पों वाली भावनाएं बैठ जाएंगी। हाँ, हम केवल सुनने तक नहीं सीमित रहे, हमको स्वयं को परिवर्तन करना है तो हर एक से सीखना है, केवल सुनने तक नहीं है। कोई विशेष व्यक्ति के ऊपर प्रभावित हो जाना, बाबा ने कहा हर आत्मा विशेष है, लेकिन उन विशेषताओं की तह तक पहुंचना, उनको उनमें कुछ हमको हाथ लगे, उसके लिए हमारा लंबे समय से आंतरिक पुरुषार्थ सबके प्रति अपनेपन की भावना होगी तो उनको विशेषता दिखाई देगी। नहीं तो जैसे जैसे जितनों को भी हम देखते हैं सबके प्रति समान भावना नहीं होती, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम दूरदृष्टा से नहीं उसके वर्तमान को देखकर सोच रहे, सिर्फ उसने जो पास में पुरुषार्थ किया है उसके ऊपर जो भगवान की दृष्टि पड़ी है उसको नहीं हम देख रहे हैं। हम केवल यही देख रहे हैं एक व्यक्ति बस ऐसा है, उसके केवल दिनचर्या को देख रहे हैं, उसके साधारणता को देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो विशेषताओं का खजाना भरा हुआ है उसको नहीं हम देख रहे हैं। तो हर एक से सीखना है तो इस परिवार के प्रति हमें प्यार जागृत होगा, नहीं तो प्यार जागृत नहीं होगा, नहीं तो वन वर्ल्ड वन फैमिली का नारा जितना मर्जी लगा ले नहीं हुआ वो। इसलिए ये विशेषता जगदीश भाई जी में थी, वो हर एक ही क्लास सुनते थे। कितनी बड़ी हस्ती जगदीश भाई, इतना लिटरेचर लिख मारा उन्होंने, उसके बाद भी सबकी वो बावजूद भी सबकी क्लासेस सुनते थे। तो कितनी बड़ी कला है ये, तो अपनेपन की भावना थी तभी तो वो सुनते थे ना, अगर है ही नहीं है तो कैसे होगा। हम पड़ोसियों को थोड़ा सुनेंगे, घर में सभी का सुनना पड़ता है ना। तो एक बेहद का परिवार है, बाबा ने कल मुरली में कहा था बेहद की माया ने तुमको बेहद की हार खिला दी है, तो माया आक्रमण करती है। तो सुनना क्या है सुनाना क्या है ये भी हमको बाबा सिखाते हैं, ये भी सुनने सुनाने का बाबा ने मंत्र दिया है। वैसे तो दूसरे बहुत सारे मंत्र हैं, वो भी थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर इस मुख से क्या क्या निकल रहा है हमको, कहा जाता है वशीकरण मंत्र जो है सबसे बढ़िया सरल, संसार में तो दूसरे दूसरे मंत्र देते हैं लेकिन सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मुख की मिठास। अगर किसी को अपना बनाना है, भले मेरे में 100 अवगुण हैं लेकिन अगर मुख मीठा है सब अपने हो जाएंगे। अगर मुख से कटाक्ष करें कोई पास में नहीं फटकेगा, इसलिए मुख की मिठास ये हमेशा हमारे में घुलती रहनी चाहिए, ना केवल स्वयं के जीवन में बल्कि दूसरों को भी। इसलिए हमेशा प्रोत्साहित करने वाले बोल, उमंगसा वाले बोल, सुख देने वाले बोल, किसी को आगे बढ़ाने वाले बोल होने चाहिए। और देखा दूसरों को आगे बढ़ाने से स्वयं का पुरुषार्थ का मार्ग खुल जाता है, बिल्कुल निष्कंटक बन जाता है वो, नहीं तो आगे पीछे होगा, नहीं तो सोचेंगे ये क्यों आगे जा रहा है, ये क्यों आगे जा रहा है। दूसरों को आगे बढ़ाने से स्वयं को आगे बढ़ना होगा, बहुत सुंदर तरीका ये, लेकिन कोई कभी कभी भारी पड़ता कहीं की, लेकिन यही तो हमको सीखना है। हमारा परिवार है, अब जिस परिवार में बेटा बाप से आगे निकल जाए तो क्या वो बाप दुखी होगा? उसको कितनी खुशी होती है, गर्व होता है उसको, महसूस होता है। तो हमारा परिवार है ये, बेटा आगे निकल के बाप की सेवा करेगा।
आजकल ज्यादा आगे निकल
आजकल तो बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये इस ब्राह्मण संसार में भी एक दो
आगे जाता है वो
वो दूसरा आगे जाता है। तो दूसरों को आगे बढ़ाना ये भी बहुत सुंदर तरीका है जो बाबा ने हमको सिखाया है, बड़े भाई बहनों ने सिखाया है, तो ये भी हमको सीखना है। फिर नेक्स्ट है, इन हाथों से हम जो भी कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म आज ही मुरली में था, तुमको कौन सी आत्मा बनना है, कौन सी आत्मा बनना है, तो क्या करो, पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या करो, श्रेष्ठ कर्म करो। इन हाथों से कुछ ऐसे कर्म ना हो जाए जिससे दूसरों को दुख मिले या स्वयं के अंदर संतोष पैदा हो जाए, स्वयं का दिल दिन में बार बार खाता रहे। तो हमको बाबा ने अनेक प्रकार की विधियां बताई हैं। अब मंत्र कौन कौन से हैं, संसार में जो मंत्र दिए जाते हैं उनकी सिद्धि के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं। पहले वो गुरुओं के पास जाएंगे, फिर जहां वो साधना करते हैं स्थान का चयन करते हैं, कई तो प्रकृति की गोद में, कोई शमशान घाट में करते हैं, और स्थान की सफाई भी करते हैं, बाएं रक्षा कवच बनाते हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता को, सीता की सुरक्षा के लिए लाइन लगा दी थी, लक्ष्मण रेखा, लेकिन जैसे रावण ने एंट्री मारी तो आग निकल आई, वो जलन हुई उसको, तो उसने उसको बाहर बुलाया। और जैसे वो राम का नाम लेता था क्या होता था, उसके संस्कार ही खत्म हो जाते थे पुराने राम का नाम लेने से रावण के। तो बाबा ने भी हमको कौन कौन से मंत्र दिए हैं, जैसे बाबा कहेंगे दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा बंधा हुआ है, हजार बुझा वाला बाप मदद देने के लिए बंधा हुआ है, देना ये हो ही नहीं सकता है। तो संसार में मंत्रों को सिद्ध करने के लिए भी बहुत कितना त्याग करते हैं, वो तपस्या करते हैं, क्या क्या शास्त्र पढ़ते हैं, पूरी पूरी नींद फिटा देते हैं, जागरण करते हैं मंत्रों की सिद्धि के लिए, घर की दुख शांति को मिटाने के लिए। हमको भी याद है, हमारे साथ भी पिताजी ने तंत्र विद्या का एक बार बहुत सारे किया, लेकिन एक किस्सा सुना देता हूं। हम तो पहले इसके ऊपर फेथ नहीं रखते थे, क्योंकि बचपन से हमको फेथ नहीं था इसके ऊपर, जे ये अंगूठियां पहनना, मालाएं पहनना, जनेऊ पहनना, हमने बचपन से फेथ नहीं रखा इसके ऊपर। लेकिन जब हम पिछले जन्म की बात सुना रहा हूं, पिछले जन्म की बात है, माना इस ब्राह्मण जन्म के पहले से, ब्राह्मण जन्म से पहले, तो जैसे हम ज्ञान में चले तो पिताजी तो पीछे पड़ गए एकदम, क्योंकि उस समय उम्र भी हमारी शादी वाली उम्र हो चुकी थी, तो और हम तो इसमें आ चुके थे, अपने बाबा के गोद में आ चुके थे। तो पिताजी ने तो बहुत प्रयास किया इस गोद से खींचने का। तो एक बार की बात है, हमको 5-6 महीने हुए थे, तो पिताजी को अच्छी तरह पता चल गया था कि ये अभी शादी करने वाला नहीं है, उनको ब्रह्म कुमारी के बारे में पता चल गया, ये शादी वादियाँ नहीं करते हैं। तो हम बैठे होते ऐसे सर्विस जहाँ हम करते थे, तो उसमें तो नशा भी शुरू शुरू में अपना ही होता है, उस नशे का तो पारावार ही बहुत होता है। तो बैठे हुए थे ऐसे कि भाई अशरीर बनने का अभ्यास करें, तो मैं जैसे बैठा हुआ आंखें बंद करके सोच रहा हूँ मैं ऊपर जाऊँ, मैं बाबा के वतन में उठ कर जा रहा हूँ, और गाने भी बड़े अच्छे अच्छे होते थे उसमें, लेकिन मैं ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूं। जैसे थोड़ा सा माना ऊपर जाता हूं मन से, तो जैसे आसमान में ऐसे लगता है क्या विचार आते हैं ऊपर पहुंचने से पहले ही, कि अभी तेरे पिताजी आएंगे आधे पौने घंटे बाद, इसी तरह से विचार आ रहे, आधे पौने घंटे बाद तेरे पिताजी आएंगे, उनके हाथ में काले रंग का बैग होगा, उसके अंदर लाल रंग की मिट्टी होगी, और वो मिट्टी तेरे ऊपर फेंकेंगे, कहाँ, तिवाटे या चौराहे पर, ये विचार आ रहे। तो मैं सोचा क्यों आ रहे विचार यार, तो सचमुच जैसे आधा पौना घंटा हुआ तो पिताजी आ गए। फिर हमने उनका आदर सत्कार किया, तो पिताजी ने बोला कि ये बैग अंदर रख लो आप, और मैं थोड़ा मार्केट चक्कर मार के आता हूँ। मैं बोला ठीक है। तो हमको उस समय तो स्मृति नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी देर फिर देखा, मैं कम से कम सोचू जो मुझे विचार आए थे, देखो तो सही। तो जैसे हमने बैग देखा जाकर, तो उसके अंदर वो कागज की पुड़िया पड़ी, जो दृश्य इमर्ज, जैसे संदेशियां सुनाती हैं, उस सेम टू सेम हमको हुआ था। तो देखा कागज उस बैग के अंदर एक पुड़िया पड़ी है कागज की, उसके अंदर लाल रंग की मिट्टी है, बस ये देखा हमने। तो हमने सोचा अब क्या किया, तो बाबा टचिंग तो करा देता है, पिता शेर तो पुत्र सावा शेर ऐसे भी कहा जाता है तो मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। तो हमको बहुत बाबा के प्रति प्यार मरा जैसे कि देखो भगवान कैसे बचाता है। हालांकि हमारा उस तांत्रिक विद्या के ऊपर इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन उसमें हमको रियलाइज हुआ कि मुझ आत्मा में अभी इतनी ताकत नहीं है जो इसका सामना कर सकूं, इसलिए बाबा ने हमारी सुरक्षा की। तो हमने क्या किया, वो कागज की पुड़िया निकाली और वहां एक बगीचा था थोड़ी दूरी पर, वहां गए और मिट्टी को फेंक दी वहां, और उसी कागज को उल्टा करके जो हमको टचिंग हो रहा था वहां की मिट्टी उठाई, लगभग उसी रंग की थी, वो मिट्टी उठा के कागज के अंदर रखती उल्टे कागज में, ओम शांति ओम शांति ओम शांति तीन बारी बोल के और कागज की पूरी बंद करके फिर हमने बैग के अंदर रख दी और हम निश्चिंत हो गए। तो ऐसा उसमें बाबा के प्रति समझो कितना प्यार उमड़ा हुआ, जैसे उस दिन विट्ठल भाई कह रहे थे ना 30 किलोमीटर जो साया उनको दिखाई दी, 30 फीट नहीं लेकिन उन्होंने किलोमीटर बोला था लेकिन था 30 फीट। तो क्या हुआ फिर थोड़ी देर में पिताजी वापस आ गए, तो जैसे शाम का वक्त हुआ तो घर को लौटना था वापस, तो हम लौटने लगे तो रास्ते वापस, तो हमको मालूम था कि जहाँ चौरस्ता आएगा या तिराहा आएगा तो ये मिट्टी मेरे पर फेंकेंगे, हम तो निश्चिंत थे। तो हम आगे आगे चल रहे और पिताजी पीछे पीछे चल रहे, और पिताजी ने मिट्टी निकाल के, हमारी नजर तो पीछे थी सारी, कॉन्शियस तो सारी पीछे थी, पिताजी ने मिट्टी निकाल के मेरे पर फेंक दी। तो हम जैसे देखते हुए अनजान बन गए थे, जानते हुए अनजान बन गए। तो घर पहुंचे, उसमें हम अकेले थे, तो घर में फिर भोजन बनाया और फिर तो रोटी हम खुद ही बनाते थे, पिताजी को खिलाई, फिर बैठ गए। तो उसमें भी पिताजी के हम बराबर नहीं बैठते थे, 23-24 साल की उम्र में भी नीचे बैठते थे, इतना संस्कार थे पहले गाँव वाले देते थे। तो बैठ गए हम, तो पिताजी बैठ गए चारपाई के ऊपर, तो बोला क्या करना है तुमको, शादी करनी कि नहीं करनी है। मैं बोला हाँ शादी तो मैं करूँगा ना, मैं ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में जाने वाला नहीं, ये तो वैसे क्या था मेरे विचार भी बदल रहे हैं। तो पिता ने सोचा मेरी मिट्टी काम कर रही है तो क्या हुआ फिर पिताजी, तो लेकिन पिताजी को ये भी पता था ये अंदर से बदल जाता है तो उनकी मिट्टी से हम उनको 6 महीने चलाते रहे, तब तक हमारी अवस्था और मजबूत होगी। और इस 6 महीने के दरमियान उन्होंने बीच में और बहुत सारे भी तंत्र मंत्र किए थे, लेकिन बाबा हमको स्पष्ट रूप से अनुभव करा देता था कि ऐसे यार कभी किसी के पास कुछ भेजते थे उसके खाने में मिलाने के लिए, कभी कुछ ऐसे चलता रहता था। खैर फिर तो एक बार फंक्शन था गांव में, तो हमने फिर सबके सामने बोल दिया, मैं बोला आपने हमारे साथ ऐसे किया और हमको बाबा ने सब कुछ दिखा दिया। पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थे, मैं बोला हमने मिट्टी भी बदल दी थी, वो सब चेंज कर दिया था। पिताजी को फिर थोड़ा धक्का लगा, कुछ तो है कुछ तो, पर तब से थोड़ा सा नरम, ज्यादा नहीं थोड़ा सा नरम। उसके बाद तो फिर वो मधुबन भी आए, फिर बहुत सारी लंबी सोच दूसरी भी है। तो ऐसे है कि जादू मंत्र भी संसार में किसी को बचाने के लिए, उन्होंने तो हमको भी अपने हिसाब से बचाने के लिए किया, वो अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट थे, लेकिन बाबा ने हमको अपना बनाया तो बाबा का जादू मंत्र कैसे काम करता है, उसकी कृपा दृष्टि हमको कैसे टचिंग कराती है, कैसे हमारे पर सुरक्षा के बचे। तो बाबा का हर एक महावाक्य, मनमना भव कहो या मध्यजीव कहो, ओम शांति का मंत्र है, ये सारे शिव मंत्र हैं, और शिव मंत्र संसार में सबसे बड़ा मंत्र है। तो इस मंत्र को बाबा के हर महावाक्य को अच्छे अच्छे सुमान है, सुमान की भी एक मंत्र का काम करते हैं, उनको हम जैसे कई बार क्लासों में भी कहा जाता है 108 बार इसको जपो लिखो, तो वास्तव में उसको हमको गहराई में जाना है। इसलिए कल हम मुरली पढ़ रहे थे, परसों बाबा ने कहा वरदानी बनने के लिए या मनसा सेवा करने के लिए बार बार सारे दिन में शुद्ध संकल्पों में तुम्हारा मन रमण करता रहे, सारे दिन में मन शुद्ध संकल्पों में रमण करता रहे, उसकी गहराई में जाओ बार बार, उसका मनन चिंतन करो। बाबा ने कहा मायाजीत बनने का सबसे साधन है मनन चिंतन करना, माया दोषी नहीं है, एक मुरली भी है माया दोषी नहीं है, दोषी तुम बच्चे हो। माया तो बहुत एक कागज का शेर है, वो भी मरी हुई चींटी के समान है वो। जो बाबा ने कहा तुम बच्चों को करना चाहिए वो नहीं करते और शिकायतें करते रहते हो। बाबा ने कहा अमृत वेले उठकर अपने वरदानी स्वरूप में स्थित होकर बैठो, अपनी ऊंची से ऊंची पोजीशन में स्थित होकर बैठो, लेकिन होता क्या है तुम बच्चे शिकायतें करते रहते हो, मेरा फलाना काम कर दो, ये मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, मेरे बच्चों का काम कर दो। हम उसी हद के संसार में फंसे रहते हैं। तो हद का संसार माना मायावी संसार, ये तो बेहद का है। अगर सोचना है तो हमको पूरे संसार के लिए सोचना है। हद की सोचते तो हम उभर चुके हुए हैं, हमारा जीवन हद का नहीं है, अभी बेहद का जीवन है। तो इस बेहद की सेवा के लिए हमें अपना दृष्टिकोण, हमारे संकल्प, हमारे विचार, ये सब बेहद के होने चाहिए। इसलिए चार दीवारी के अंदर नहीं, पूरे संसार में हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि माया अटैक नहीं करी, माया अनेक रूपों से आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, लेकिन उससे हमको घबराना ही नहीं है। लेकिन उसकी तरफ हमको ध्यान ही नहीं देना, जैसे ध्यान नहीं देना अर्थात जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, देखने उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना, उसके पीछे थोड़ा जाएंगे, क्यों आया, कहां से आया, किधर घूमने के लिए आया, जाएंगे। यहां टूरिस्ट आते हैं इतने, उसको हम ज्यादा पूछते हैं, उससे हमारा जितना काम होता है हम उसे उतना ही करते हैं, उतना उसको सुनाएंगे, ज्यादा थोड़े नहीं पूछेंगे। तो इसी तरह विचार माया भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्यों आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसको पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको हम टेका देते रहते हैं और ही मजबूत बना देते हैं उसको। तो हमको उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय हमको किस तरफ ध्यान देना है ये देखना है। तो बाबा ने कहा अपने वरदानी स्वरूप में होकर बैठो, लाइट हाउस रूप में बैठो, स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में, विश्व कल्याणकारी स्थिति में, भाव समान स्थिति में बैठो, माइट हाउस बनकर बैठो, विश्व को सकाश देने का काम करते रहो। ढेरों सारे काम दिए हमको, ढेरों सारी भी दिए हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां हैं, उन युक्तियों को कहेंगे तो मुक्ति के मंत्र स्वतः हमारे पास आते जाएंगे। यहां को मंत्र क्या है, बाबा का हर महावाक्य मंत्र का काम करता है, और मंत्र में शक्ति है, एक एक महावाक्य में कितनी शक्ति है? अगर हम चिंतन करेंगे तो मनन चिंतन क्या है, ये भी एक मंत्र है। लेकिन सारे दिन हम क्या क्या करते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को, हद की व्यवस्थाओं को के प्रति तो नहीं हमारा समय जाता है, बेहद में रहना है। इसलिए स्वयं ही अच्छे अच्छे महावाक्यों को निकाल निकाल के उनका रस बना के पीते रहना है, अमृत रस। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, तो अमृत रस पीते रहना है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं मुक्ति के मंत्र, तो और भी कुछ का कोई अलग से कोई विशेष मंत्र नहीं है, लेकिन स्वमान में रहे, मन इन चिंतन करे, मन मना बाबा मामे हम क्या मित्र, जैसे दादी जानकी जी कहते हैं मैं और मेरा कौन, ये दो चीजें देख लो, इसी में पूरा संसार समाया हुआ है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा हूं, केवल इसी का अनुभव कर लो, फिर सारे अनुभूति के रास्ते स्वतः खुल जाएंगे। लेकिन दूसरी दूसरी बातों को पकड़ के रखे हो, क्योंकि आत्मा के अंदर बड़े गहरे तलप रहे, हम तो ऊपर ऊपर से देखते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर में बहुत गहरे तल पर वो संस्कार बैठे हुए हैं। उसके लिए गहरी साधना चाहिए, आंतरिक साधना चाहिए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, विशेष बैठक नहीं, हमारा निरंतर है। निरंतर में जब अंतर पड़ जाता है तो फिर मंत्र काम नहीं करते हैं, फिर परतंत्र हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। इसलिए निरंतरता बनाए रखने के लिए हमको खुद के रास्ते तलाशने हैं, खुद ही पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।
पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों।
पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों।
तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों।
पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर
हैं।